محمدين صلى على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ہر مومن کے ذہن میں ہے کہ صاحب ہم نے انتقال ہونا ہے، ہم کو موت آنی ہے. ہر انسان جانتا ہے، اور موت ایسی یقینی چیز ہے کہ کافر کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. کافر بھی جانتا ہے کہ صاحب تھوڑے دن کی عیاشی ہے، پھر اس کے بعد مرنا ہے. موت ایسی چیز ہے اس سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، خطاب کر کے، کہ آپ اللہ کی عبادت فرمائیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے. یقین کا ترجمہ تمام مفسرین نے موت کیا، یعنی یہ اتنی میرے مرشد نے فرمایا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، کہ موت اتنی یقینی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا نام ہی یقین رکھ دیا کہ کافر بھی اس سے انکار نہیں کرتا. وہ بھی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. تو مسلمان کا تو عقیدہ کتنا زبردست ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد، ہمارا یہ جہاں تو عارضی جہاں ہے، یہ دنیا ہماری عارضی دنیا، مرنے کے بعد ہمیں ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، ہماری دوسری دنیا شروع ہوگی. تو لہذا اس دنیا کے کا ایک حصہ ہے وہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن. اور اللہ تعالیٰ اور ہماری جو تیاری ہوتی ہے، دیکھو عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو جہاں اس کی منزل ہے اس منزل کے لیے سامان بھیجے. جیسے دیکھو کراچی میں آتے ہیں مزدور کراچی میں آتے ہیں، لیکن یہاں پتہ ہے کیا کھاتے ہیں؟ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اور سب پیسہ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہماری منزل، یہ گھر ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا وطن یہ نہیں ہے، یہاں ہم مسافر ہیں. تو وہ مسافروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے اور زیادہ مہنگے نہیں، اور کھانا بھی سادہ کھاتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پونجی جمع کریں گے، اور جو منزل ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن کے لیے اپنی راحت کا سامان جمع کریں گے. بتاؤ، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو دوستو، ہر مسلمان، ہر انسان کی یہ منزل نہیں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا تو مسافر خانہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی سے، فرمایا کہ کن فی دنیا کانک غریب، ارے تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا. اور مسافر کیا کرتا ہے؟ مسافر اگر ریلوے اسٹیشن، جیسے جب ریل گاڑی چلتی ہے تو اسٹیشن پہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ جلدی سے چائے پاپا کھا لیتا ہے. کہتا ہے بس کچھ چائے پاپا کھا لوں، اور وہ چائے ایسی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ چلو چائے نہ صحیح، نزلے سے تو بچا لے گی، گرم پانی ہے نا، گرم پانی نزلے سے تو بچا لے گا. اور کہتا ہے جیسی بھی چائے ہو، یہ نہیں کہ ارے چائے تم نے کیسی، اسے اگر لڑنے جھگڑنے لگ جائے گا تو اس کا سارا وقت کھوٹا ہو جائے گا. کہتا ہے کہ ارے جیسی بھی ہو گزر جائے، منزل پہ پہنچ کر ہم اطمینان اور سکون سے اپنے بیوی کے ہاتھ سے یا ماں کے ہاتھ سے چائے پیئیں گے. یہ کہتا ہے نا، کہتا ہے یار ابھی جو ملی خیر ہے دیکھا جائے گا، نزلے سے تو بچائیں گے، گرم پانی پی کر نزلے سے تو بچائیں گے، جو شاندے کا کام دے گی چائے. تو وہ کیا ہے کہ اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ عقل مند آدمی ہے جو اپنی وطن کے لیے سب راحت اور انتظام کرتا ہے، اس کو عقل مند آدمی. ایسے ہی وہ شخص جو دنیا میں رہے اور آخرت کی فکر کرے، آخرت کے لیے سامان جمع کرے، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ عقل مند ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو دنیا ہی میں دل لگائے کہ جو مال ملا، جو کچھ ملا، سب کچھ یہی ختم کر دیا، اور آخرت میں جب پہنچا، پوچھا اللہ میں کیا لایا، تو کہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے؟ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے عجیب و غریب عنوان ہماری نصیحت کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنی گردن یوں کریں نا، وہ مجھ کو نظر نہیں آتے، بس ٹھیک ہے. وہ ہمارے ساتھی دوست پیچھے بیٹھے نا، اب مجھ کو نظر آ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. اب ٹارگیٹ بالکل 90 ڈگری ہو گیا، ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، تم تسلیم کرتے کہ روز قیامت کا الحمدللہ ہر مومن ایمان لے کے آتا ہے کہ دن آنے والا ہے. ہاں، لیکن اس دن کے لیے یاد رکھو، لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی. کیونکہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے دو چیز کا ذکر فرمایا، ایک مال اور ایک اولاد، کیونکہ انہی پہ زیادہ فخر کرتا ہے نا. دنیا کے اندر جو فخر کرتا ہے انسان، کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ فارن ہم نے جو ہے وہ اتنے ہزار ڈالر جمع کر کے رکھے ہیں، اور میری تو اتنے بیٹے ہیں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میرے اولاد تو میرے لیے بس سب کرے گی، وہ کرے گی. और मेरे इतने लड़के पैदा किए हैं, इतने हैं साहब, लेकिन नतीजा उसके देखते हैं कि क्या कहते हैं, दुनिया में तुम हो जाएगा, चलो दुनिया में तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन कयामत के दिन ये माल औलाद काम आने को नहीं है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, माल औलाद कब्र में तेरी जाने को नहीं। सुन लीजिए साहब, यही माल और औलाद के बारे में सुन लीजिए, माल और औलाद कब्र में तेरी जाने को नहीं, दोजख की मुसीबत से तुझको छुड़ाने को नहीं, दोजख की मुसीबत से तुझको छुड़ाने को नहीं, जो जामल कब्र में तेरा कोई यार नहीं, क्या कयामत है कि तू इससे खबरदार नहीं। अरे तू माल जमा करता है, समझता है कि तुझको मौत से बचा सकेगा ये माल, तो बेवकूफ है उसका, और समझता है कि मेरी औलाद मेरे काम आएगी, तो जब तक काम नहीं आएगी जब तक हम उनको क्या बनाएंगे। अब आप देखो, अब अगर ये बात आती कि जब माल औलाद हमारे काम नहीं आएगा तो फिर क्या चीज काम आएगी कयामत के दिन। तो अब देखो उसमें हाल ही अल्लाह ने फरमाया, इल्ला इस्तिस्ना किया, मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, जो कि कल्ब सलीम भला चंगा दिल लेकर हमारे पास आएगा उसका काम बनेगा। अब रही बात के साथ, ये मैंने बुजुर्गों को देखा, अल्लाह वालों के पास माल भी होता है, उनके पास औलाद भी होती है, और अल्लाह वाले तमन्ना भी करते हैं कि हमारे पास अल्लाह माल दे हमको और औलाद दे हमको, तो फिर यहां क्या बात है। तो कल्ब सलीम की 5 तारीख है, क्योंकि अगर कल्ब सलीम की तारीख पता चल जाएगी ना, तो फिर पता चलेगा कि असल में ये वो माल, कौन सा माल हमारे लिए फायदेमंद है आखिरत के लिए, और कौन सी औलाद हमारे आखिरत के लिए फायदेमंद है। तब सुनिए, 5 कल्ब सलीम की 5 तफसीर है। नंबर 1, कि कल्ब सलीम उस शख्स का है, उस शख्स का दिल सलीम है, यानी भला चंगा दिल है, किसका, अल्लज़ी युरशिदु बनीही इलल हक, कि जो अपनी औलाद को, जो अपनी औलाद को हक का रास्ता दिखाए। ये नहीं कि खुद तो तहज्जुद पढ़ रहे, खुद तो चिल्ले पे चले गए, और खुद तो जो नमाज के लिए चले गए और औलाद टीवी देख रही है, या औलाद चर्ची होटलों में बैठ के चर्च पी रही है, गांजा पी रही है, या जो है वो दूसरी बदमाशी कर रही है। खुद तो तहज्जुद के लिए उठे और औलाद जो देखा वो सब जी इंटरनेट पे बैठी थी और केबल और टीवी देख रही है। नहीं, खुद तो चिल्ले पे चले गए और औलाद के लिए टीवी वी सब इंतजाम है, फिल्में देख रहा है और जो सब कर रहा है वो सब काम चल रहा है। तो क्या है, ऐसी औलाद काम नहीं आएगी, ऐसी औलाद काम नहीं आएगी। तो लिहाजा उसके लिए है कि खुद भी हर के रास्ते पे चले और अपनी औलाद को भी बताए कि देखो बेटा, इब्तदा बचपन से ही तरबियत करे। असल में बात ये कि बचपन में तो जो है जब जवानी होती है ना, तो जवानी में क्या काम करता है, जवानी में तो उसको अपनी बीवी पे चढ़ने पे कई दिन ही याद रहते हैं बस, और उसके बाद ओला बच्चे पैदा, फिर क्या बच्चों का क्या है, वो तो जी खुद ही पलते रहेंगे, रोडों पर पल जाएंगे, उनका क्या है, वो तो रोडों पर पल जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। अगर आपने औलाद को नहीं बताया कि बेटा देखो पानी पीने का सुन्नत तरीका ये है कि आप पानी सीधा हाथ से पीजिए, बैठ के पीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा, 3 सांस में पियो, अगर आप उसको ये नहीं बताएंगे तो क्या वो मोहल्ले वाले बताएंगे उसको जाके। और आपने तो उसको आप अच्छा फिर कहते कि बीवी ने कहा कि टीवी लेके आओ, तो कहते टीवी नहीं लाके आएंगे, क्योंकि चिल्ला लगाया ना तब जगह में, तो कहते टीवी नहीं लाऊंगा, तो बीवी कहती है कि अगर टीवी नहीं लाओगे तो बच्चे पड़ोस में जाकर टीवी देखते हैं। अच्छा चलो यार टीवी ला के घर में रख, डर के मारे अब घर में रख दिए, क्यों कि साहब। अच्छा तो इसकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे बच्चे कहें कि हमको जहर खाना है, तो अब पता चला जी वहां जाके दूसरे मोहल्ले में जाकर जहर खाते हैं, तो यार बेटा तुम वहां की जाके जहर खाते हो, जरूरी बाजार से हम तुम्हारे लिए घर में ला देते हैं, घर में जाके जहर खा लेना, घर ही में खा लेना, यहां हमारे सामने तौर पर तरफ से जान देना, दूसरी जगह जाके मरने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, अब टीवी औलाद को बचपन से बताए और उनको हक उनको बताए कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, उन बचपन ही से बीवी को भी समझाए, क्योंकि देखो ये बीवी और बच्चे काम आने वाले नहीं है अगर हमने उनकी बात मानकर अल्लाह की नाफरमानी कर ली। अब रही बात कि साहब अगर टीवी नहीं देंगे तो क्या दें, आप उनको दूसरी खिलौने लाके दीजिए, ऐसे खिलौने जिसमें तस्वीर नहीं बनी हुई, रेलगाड़ी लाके दीजिए, उनको घुमाइए फिराइए, किसने मना किया इस बात से, लेकिन उनको हक का रास्ता दिखाइए। मतलब ये कि अल्लाह ताला के हुकूक बताइए, औलाद को बताइए कि बेटा टखना जो है वो छुपाना नहीं चाहिए, सलवार टखने से ऊपर होनी चाहिए, और दाढ़ी रखाए अल्लाह वालों के पास, उलमा के पास लेके भी जाए ताकि उनको पता तो चले कि मौलवी भी कोई मखलूक होती है। आज बच्चा बड़ा होता है कहते मौलवी क्या चीज होती है, उसको मालूम ही नहीं होता, इसलिए मालूम नहीं होता कि कभी अब्बा भी गए नहीं, अब्बा गए नहीं और फिर उसके बाद अब्बा ने कभी बताया नहीं, लिहाजा वो कहता है यार मौलवियों की बातें ऐसे ही है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जब बड़ा होता है, देखो अल्लाह ताला अगर चाहते, अगर अल्लाह ताला चाहते तो बच्चा माँ के पेट से बालिग निकलता, बताओ अल्लाह को इस बात पर कुदरत थी ना कि बच्चा जब माँ के पेट से निकलता वो बालिग होता, लेकिन अल्लाह ताला ने 15 बरस की उम्र में बालिग किया, आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? इसलिए कि ताकि उसको दुनिया में रहे, उसकी तरबियत हो जाए और उसको पता चले कि नमाज कोई चीज है, रोजा कोई चीज है। अभी वो मुकल्लफ नहीं है, अभी जब बच्चा है वो नमाज रोजे का मुकल्लफ नहीं है, शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, जब मुकल्लफ होगा जब बालिग होगा। लेकिन उसको पहले से इसलिए बालिग नहीं किया ताकि वो देखे मौलवी क्या होते हैं, कुरान क्या है, हदीस क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, उसको सब पता चले, ताकि जब वो बालिग हो जाए तो फिर उसको कहा जाए देखो बेटा जो तुम करते रहते ना यही तो तुमको काम करना है, उसको नई चीज ना लगे। अब वो नई चीज, अब कितने लोग ऐसे हैं कि उनसे कहो कि भाई ये काम है, कहते हम तो, हमको तो ये मालूम नहीं, हम तो ये जानते नहीं, हम तो इनको मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम क्या नहीं है। अरे किसी अल्लाह वाले के पास, किसी आलिम के पास बैठे होते तो पता चलता कि दीन क्या चीज है। दीन कोई जो है वो बाजारों में थोड़ी मिल जाता है, पैसों से नहीं मिल सकता, याद रखना इस बात को। जब तक किसी अल्लाह वाले की या किसी आलिम की सोहबत में नहीं बैठेंगे हमको दीन नहीं पता चलेगा। अब देखो मैं नमाज का यहां तरीका हर रोज बताता हूं, या मानुल्लाह भाई बेचारे इतनी दूर से सब इस असर की नमाज पढ़ने के लिए सब इसलिए आते हैं कि देखो कि ये बातें कि नई बातें पता चल, चाहे क्यों कभी सीखा नहीं, कभी गए नहीं हम लोगों ने, तो लिहाजा इसीलिए है कि जब बैठेंगे तो हमें पता चलेगा। लिहाजा औलाद के लिए भी है कि औलाद को अगर हम बचपन से उनको दीन की तालीम देंगे तब उनको पता चलेगा कि ये कोई नई चीज नहीं है, वरना कहेंगे ये पता नहीं क्या चीज होती है। अब हाल देखो, हाल यह है कि ना अब्बा को नमाज पढ़नी आती है ना बच्चे को नमाज पढ़नी आती है। क्यों? ना अब्बा ने सीखी ना बच्चे ने सीखी। जब अब्बा ने सीखी तो अम्मा कहे अब कैसे करेगा, अब देखो सलाम का तरीका है, हाँ देख ले राय सलामकुम, और मैंने आज जैसे तरीका बताया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बताइए ये तरीका अक्सर ने नहीं सुना होगा पहले कभी, क्यों सर है ना, क्यों इसे सीखा। तो दुआ का तरीका कोई यूं मांग रहे कोई यूं मांग रहे, सब खिलाफ है सुन्नत। लिहाजा फिर कहते हैं कि साहब हम दुआ मांगते हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अरे कैसे कबूल होगी, जब सुन्नत के खिलाफ है, जब सुन्नत के खिलाफ है तो कैसे कबूल होगी। मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। जिन्होंने अल्लाह ताला को अकल से पाना चाहा वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सके, वापस आना पड़ा उनको। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। यानी जो अल्लाह की मोहब्बत में हुए उन्होंने कहा कुछ भी हो हम अल्लाह रसूल की दीन सीख के रहेंगे, तो लिहाजा वो लोग अल्लाह को पा गए, उन्होंने अल्लाह को पा लिया, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत से। तो लिहाजा दोस्तों कल्ब सलीम की पहली तस्वीर क्या है कि वो अपनी औलाद को भी तालीम दे लेकिन डंडे ना मारे, प्यार से कहे, प्यार से कि बेटा देखो बचपन ही से सिखाए, जब छोटा है बच्चा तब से उसको सिखाए, बड़े होके तो वो थोड़ी मानेगा फिर बात, फिर शिकायत करेंगे कि मौलवी साहब तावीज दे दो हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। वजह क्या है कि बात इसलिए नहीं मानता कि देखो बाप की बात बच्चा उस वक्त मानेगा, बाप की बात क्यों मानेगा, जब उसको अल्लाह का खौफ होगा तब बाप की बात मानेगा, और हमने कभी अल्लाह का हक बच्चे को सिखाया नहीं तो वो बाप का हक कैसे अदा करेगा। कभी अल्लाह का हक सिखाया कि बेटा देखो तुम्हारा पैदा करने वाला है उसको नाराज ना करना, कभी किसी बाप ने कहा कि बेटा देखो अपने अपने अल्लाह को नाराज मत करना, वो यही कहते हैं कि बेटा देखो पुलिस वाले से करना, पुलिस वाले से डरना, और देखो इनकम टैक्स वाले ऐसे होते हैं, देखो मिस की बात मानना इसको में ना करना, लेकिन कभी ये ना बताया कि बेटा तुम अपने अल्लाह को नाराज मत करना, गुनाह मत करना, कभी गुनाह का तस्करा भी नहीं करते बेटे से, उसको बताते भी नहीं है कि बेटा किसी औरत को मत देखना, चचाजाद मामूजाद खालाजाद को मत देखना, उससे मत मिलना, और किसी मोहल्ले की लड़की को मत देखना। कभी बाप ने बेटे को बताया नहीं तो नतीजा क्या, स्कूल जाता है सबको देखता है, इसको देखा उसको देखा, अब वो पता ही नहीं गुनाह कर रहा है, और जब बाप को फिक्र ही नहीं है। हाँ बाप दादा नमाज पढ़ा देता है तो नमाज पढ़ाने से काम थोड़ी चलता है सिर्फ, अब कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है उसके बाद जाके औरतों को देख रहा है तो क्या हुआ, तब उसने अपना अमल जाया कर दिया और दिल में गंदे ख्याल पका रहा है, और टीवी देखे और नमाज भी पढ़ रहा है टीवी भी देख रहा है, दोनों काम चल रहे, तब क्या होगा, औलाद फिर नहीं सुधरेगी, ऐसे कभी नहीं सुधरेगी। और बचपन से उसको हम तालीम दें, उनको मोहब्बत से बताएं, डंडे से कोई नहीं हो सीधा होता, याद रखना मोहब्बत से बताएं कि देखो अब अच्छा बाद लोग जो है बड़ी उम्र में जाके तबलीग में जाए या अल्लाह वालों के पास बैठे अब वो हो गए तो फिर बीवी कहती है कि हाँ बच्चे अब्बा ने कहा बेटे को कि नमाज पढ़ो, तो बीवी कहती है अच्छा अच्छा रहने दो हमें मालूम है तुम पहले कहते थे तो तुमने तो इतनी देर में किया, तो नहीं अब उसको कह दो कि ठीक है हमने तो गलती की अब ये गलती हम नहीं दोहराने चाहिए, हम ये नहीं कहे, हाँ उसको मोहब्बत से समझाओ कि बेटा देखो क्या फायदा दुनिया की जिंदगी क्या चंद रोज के, उनको अल्लाह वालों के पास लेके जाओ, अल्लाह वाले उनको मोहब्बत से समझाएंगे प्यार से समझाएंगे कि देखो बेटा इससे कोई फायदा नहीं, تو لہٰذا اپنی اولاد کو بھی تعلیم دے، نمبر ایک. اب اور دوسری بات کیا ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر، کہ وہ اپنے مال کو جو اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے اس کو نیکی کے راستے میں استعمال کرے، نیکی کے راستے میں اس کو استعمال کرے، تب جو ہے وہ مال اس کے کام آئے. یعنی اگر وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے پہنے، اپنے لیے گاڑی لیتا ہے لے اپنے لیے، لیکن جو اللہ کا حق ہے زکات ہے، جیسے صدقات ہے، صرف زکات 2.5% ہے تو سال میں جو مال سے گزر جائے 2.5% زکات ادا کرے، اس کے علاوہ کوئی غریب آتا ہے غریب کو دے، مسجد ہے مدرسے میں لگائے، مسجد پہ لگائے، اللہ والے علماء پہ خرچ کرے، اور جو غریبوں پہ اپنے رشتے داروں کو دے، یہ سب مدد کرے. یہ نہیں کہ بس اپنا مال جمع کیا میرا مال میرا مال. تو دوستو یہ میرا مال نہیں ہے، میرا مال کیا ہے جو کھا لیا جو پہن لیا وہ مال ہے بس. اس کے بعد سب کیا ہوگا، وارث قبضہ کریں گے، مرنے دو پھر سب مال کھینچیں گے، ایسے کھینچیں گے، یہ ہوگا مال. تو لہٰذا کیا ہے کہ لہٰذا قلب سلیم کس کا ہے، جہاں کوئی نیکی کا معاملہ آتا ہے کہتے میں اپنا مال پیش کروں اور اپنی اولاد کو دین کے راستے پہ لگاؤں. یہ ہے دو تفسیر ہو گئی. اب تیسری تفسیر سنیے قلب سلیم کی، دو تفسیر. نمبر ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو بھی تعلیم کرے، ان کو دین کی بات سکھائے، اور دوسری تفسیر کیا ہے کہ وہ اپنی جو مال اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس مال کو اللہ کی مرضی کے کاموں پہ خرچ کرے، اور جو اللہ کی ناخوشی کے کام ہے، اب شادی پہ ہے، شادی ہے فضول کی رسمیں ایسی کری ہیں کہ یہ دے وہ دے یہ کر وہ کر، اور اس کا کوئی حاصل نہیں. جب سب کیا منع کرو کہ بھائی ایسا کام مت کرو تو کہتے ہیں کہ برادری والے ناراض ہو جائیں گے. ارے قبر میں برادری والے کام آئیں گے؟ کہتا قیامت کے دن برادری والے کام آئیں گے تو اللہ کام آئے گا، اللہ رسول کی باتیں کام آئے گی. دوستو یہ برادری والے کسی کام نہیں آتے، یہ تو آپ کو قبر میں دھکا دے کے چلے جائیں گے اور اس کے بعد فریم کا انتظام کریں گے کہ لاؤ بریانی کی دیگ لاؤ جو ہے وہ قورمے کی دیگ لاؤ، وہ تو مر گیا، لاؤ اس کے مال میں سے ہم کو مال کھلاؤ، بڑا کنجوس تھا تالا نکالتا نہیں تھا. یہ کہے گی نا اور کیا کہے گی، وہ تو برادری تو سب کھانے کے لیے آئے گی مرنے کے بعد، اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ کیا کیا اس نے، وہ تو سب کھانا کھانے بیٹھے گی اور یہ ہاتھ دو گے لاؤ جی لاؤ، ہاں ہاں تیل کم ڈالا ہے کھانے میں، او ہو بوٹی بھی تو دیکھو بڈھے بکرے کا گوشت لے کے آ گئے اور اس نے مرغی کی ٹانگی نظر نہیں آ رہی، نمک کتنا تیز کر دیا، ان کو کھانا پتہ نہیں کہاں سے پکوایا، لگتا ہے کہ بیٹے کو اپنے باپ کے مرنے کا صحیح غم نہیں ہے. بتائیے صاحب ایسی بات ہے، فضول کیا آپ کیا وہاں پیسہ خرچ کیا اور کچھ نہ ملا. اگر وہی پیسہ وہی باپ مر گیا یا اولاد مر گئی وہی پیسہ کسی مسجد میں لگا دے مدرسے میں لگا دے تو پھر اس سے کیا حاصل ہوگا، اس سے حاصل ہوگا اس کی طرف سے کہ اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک کام چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور کھلاتے کس کو، برادری والے کو، جو خود بھی اتنی موٹی موٹی تونگے لیے بیٹھے ایسے آ کے بیٹھ گئے، او جی بسم اللہ کرو جی کھاؤ بس. اور نتیجہ کیا اس کے بعد، نہ کھانے پہ بسم اللہ پڑھی نہ الحمدللہ بولا، بس کھایا پیا پیٹ بھرا، ہاں جی مہربانی جی شکریہ، سلاد نہیں تھا یہ نہیں تھا، کرتے ہوئے نکل گئے اور حاصل کچھ نہیں کہ ابا کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا. بتاؤ ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ المال کو اللہ کے راستے میں استعمال ہے. دو بات ہو گئی. اب تیسری تفسیر سنیں، الذی یکون قلبہ خالیا اما سوی اللہ، کہ جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، بس وہ جسم پہ ہو لیکن دل میں نہ ہو. اسی کو میرے شیخ نے فرمایا کہ بھلے ہاتھ میں موبائل ہو اور پیسہ جیب میں ہو جسم پہ ہو لیکن دل میں کیا ہو، دل میں صرف اللہ ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدا. کہ اللہ ہم کو آپ کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دے، ہم جدھر دیکھیں آپ ہی ہو، آپ کے جلوے ہم کو نظر آئے، بیوی کو دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ اللہ آپ نے یہ للا آپ نے دی ہے، بچے کو دیکھیں اللہ یہ بچے آپ کی عطا ہے، مال کو دیکھیں اللہ یہ مال آپ کی عطا ہے، ہر چیز اس کو مولا ہی کی نظر آئے، اپنا کچھ نظر ہی نہ آئے، غیر کوئی نظر ہی نہ آئے. یہ ہے. اور الذی یکون قلبہ عن غلبۃ الشہوات، اس کا دل شہوت کے غلبے سے خالی ہو جائے، اس کا دل شہوت کے غلبے سے خالی ہو جائے. اور تو یہ تو ہوا قرآن، جب جس کا جو ایسا بھلا چنگا دل لے کے آئے گا، जो ऐसा दिल लेके आएगा कि जो अपनी औलाद को तरबियत करे, उसको हक का रास्ता दिखाए और माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और जो है वो अपने दिल में उसके गलबा शहवत ना हो। और अल्लज़ी यकूनु खालियन अनिल अकायदिल बातिला, कि जिसका दिल बातिल अकीदे और गलत अकीदे से जिसका दिल खाली हो जाए वो भी भला चंगा दिल है। चार और नंबर पांच ये कि जिसके दिल में अल्लाह के सिवा कोई ना हो, अल्लाह के अलावा कोई ना हो। मेरे मुर्शिद के शेर है, वो दिल के जिसका नाम दुनिया में कल्बे मुस्तर था, वो दिल के जिसका नाम दुनिया में कल्बे मुस्तर था। अजीब गरीब शेर है, वो दिल के जिसका नाम दुनिया में कल्बे मुस्तर था, फलक पे जाके वो हम शक्ल माहो अख्तर था, फलक पे जाके वो हम शक्ल माहो अख्तर था, माह माने चांद और अख्तर माने तारा। वो दिल के जिस दुनिया में जिसका नाम कल्बे मुस्तर था, यानी कल्बे मुस्तर तड़पता हुआ दिल किसकी याद में? हसीनों की याद में, पेशाब के मकाम की याद में या पखाने के मकाम की याद में? अरे नहीं, अल्लाह की याद में तड़पता था कि हम कैसे अपने मौला को खुश करें और अल्लाह की नाराजगी से बचे। वो दिल था वो, ये थोड़ी कि कहां से बस माल आ जाए, कहां से हमें और नफा हो जाए, कहां से बस हम किसी हसीन को देखें, कहां से हम किसी लड़के को देखें और उसके पेशाब पखाने के मकाम के चक्कर में पड़े रहे। वो दिल नहीं कि जो हसीनों के लिए हो और जो है वो नमाज की फिक्र ही ना। अरे वो दिल कि जो अल्लाह की याद में तड़पता हो, कि जिसमें अल्लाह की मोहब्बत कम होती हो, अल्लाह की मोहब्बत कम होती हो, क्या कि हम अपने मौला का खुश रखें और एक लम्हा भी अपने अल्लाह को नाराज न करें। वो दिल क्या? वो दिल के जिसका दुनिया में नाम कल्बे मुस्तर था, फलक पे जाके वो हम शक्ल माहो अख्तर था। अरे वो दिल जब आसमानों पर जाता है तो वो मिस्र जो है वो चांद के और मिस्र तारे के चमकता है, फरिश्ते भी देखते हैं उस दिल को। जिस मिट्टी के अंदर वो दिल होता है वो दिल चमकता हुआ और नूरानी दिखाई देता है। अल्लाह वालों की नजर से पूछो, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का वो तड़पता हुआ दिल होता है, अल्लाह की याद में वो दिल नूरानी और चमकता हुआ दिखाई देता है। और वो दिल जब होगा, जब दुनिया से जाएगा अल्लाह के हुजूर में, तब क्या कहेगा? ये सब मेरे शेख के अशआर हैं। तब हजरत ने फरमाया कि जब अल्लाह के हुजूर में पेश होगा, अल्लाह को फरमाएंगे कि क्या लेके आया, तब सुनो वो क्या कहेगा कि मैं क्या लेके आया हूं, कि तेरे हुजूर में मैं दर्दो गम से भरा एक सफीना लाया हूं। सफीना कहते कश्ती को। मैं दर्दो गम से भरा एक सफीना लाया हूं, तेरे हुजूर में आबगीना लाया हूं। मैं दर्दो गम से भरा एक सफीना लाया हूं, तेरे हुजूर में एक आबगीना लाया हूं। कि अल्लाह हमारा दिल आपकी मोहब्बत के तरफ में और आपकी याद में और हसीनों से नजर बचाया तो हमने दिल गम पे दिल उठाए, दिल पे गम उठाया तो इन गमों से हमने अपने दिल को सजा लिया और यही गम हमारे दिल के अंदर है और कहते हम आपको नाराज न करें और आपको खुश रखें, यही दर्द और यही गम हम जो है दुनिया से लेके आए। मैं दर्द और गम से भरा एक सफीना लाया हूं, ये मामूल एक गम नहीं, भरा सफीना। हमारी कश्ती, हमारी जिंदगी की जो कश्ती है वो इसी खेल में है, हमारी यही कहानी है कि अल्लाह बस हर वक्त नजर बचाना और आपकी याद में बस जिंदगी गुजारना और कि कब मेरा मौला हमको याद करे, आपको खुश रखना और आपकी नाराजगी से बचना, बस यही हमारी जिंदगी की कहानी है। मैं दर्द और गम से भरा एक सफीना लाया हूँ, मैं दर्द और गम से भरा एक सफीना लाया हूँ, तेरे हुजूर में एक आबगीना लाया हूँ। हमारा क्या था? न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंगों बू से, न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंगों बू से, किसी और से मुझको है मेरी जिंदगी का धारा। हमको ये फूल, दुनिया के फूल और इनके रंगों बू से हमको मतलब नहीं है। अहले दुनिया तो चमन में है गुलों के बंदे, और दुनियादार क्या है? वो चमन के जानकर कभी जो है इस हसीन को देख लो, कभी इस औरत को देख लो, कभी इस लड़के को देख लो, कभी ऑस्ट्रेलिया से माल जमा कर लो, कभी दुबई से माल ले लो, कभी जापान से माल ले लो, बस यही है, वो ये मिट्टी की चीजों में मुबतला है। लेकिन तेरे दीवाने तो जाते हैं दयादानों को, तेरे दीवाने क्या है? वो अपनी तमन्नाओं का खून करते हैं, वो तमन्नाएं जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है उन तमन्नाओं का खून करते हैं, ये है तेरे दीवाने। अहले दुनिया को है रात आई ये फानी दुनिया, ये जो मरने वाली दुनिया है ये इनको बेहिजी के पीछे पड़े हुए, एक दिन खुद भी फना हो जाएंगे। अहले दुनिया को है रात आई फानी दुनिया और नारा है इसको मोहब्बत तेरे मस्तानों को, और अल्लाह की याद में तड़पना, अल्लाह की याद में रोना, अल्लाह को याद करना और गुनाहों से बचना और इसमें गम उठाना, ये तेरे मस्तानों को रास्ता है। तो न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंग बू से, न गुलों से मुझको मतलब, न गुलों के रंग बू से, किसी और सिंध को है मेरी जिंदगी का धारा। जो गिरे इधर जमीन पर मेरे अश्क के सितारे, जो गिरे इधर जमीन पर मेरे अश्क के सितारे, तो चमक उठा फलक पर मेरी बंदगी का तारा। यानी हमारे आंसू जमीन पे गिरे तो हमारी जो वो बंदगी का इशारा आसमानों पे चमक उठा। यानी आसमान वाले ने हमको कहा कि वाह वाह शाबाश कि तूने हमारे याद में रोया, वाह शाबाश तूने हमारी याद में जो है वो गुनाह से बचा और तेरे आंसू निकल आए। तकलीफ हुई तुझको कि नजर बचाने में, लेकिन तेरे आंसू निकल आए, लेकिन तूने अपनी नजर खराब नहीं की, शाबाश सच। तो लादा क्या हुआ, उसकी बंदगी का तारा आसमान पे चमक उठा। वो क्या हुआ, अल्लाह वाला बन गया, अल्लाह वाला बन गया। तो क्या पेश किया, क्या अल्लाह वाला क़यामत के दिन क्या पेश करेगा कि मैं दर्द और गम से भरा एक सफीना लाया हूँ तेरे हुजूर में, एक आबगीना लाया हूँ। अब उस आबगीने की और सफीने की क्या खसूसियत है, अब सुनो। तेरी रजा का है बस, तेरी रजा का है बस शौक और जस्तजू इसमें, तेरी रजा का है बस शौक और जस्तजू इसमें। अल्लाह मुझको बस यही तलाश है कि मेरा शौक और मेरी तलाश यही है कि मैं आपकी रजा को तलाश करूं। मेरी हजार तमन्ना का है लहू इसमें, मेरी हजार तमन्ना का है लहू इसमें। ए मैंने जो हराम ख्वाहिशात थी ए अल्लाह उसको खून कर दिया, लेकिन मैंने आपको नवाज नहीं किया। मैं ऐसा दर्द भरा दिल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर लेके जाऊंगा, मैं ऐसा दर्द भरा दिल अल्लाह के हुजूर लेके जाऊंगा। और ये दिल, लेकिन ये दर्द भरा दिल ये बाजारों में नहीं मिलता दोस्तों, ये जिक्र तिलावत तहज्जुद से नहीं मिलता, और ये चिल्ले लगाने से नहीं मिलता, ये हज करने से नहीं मिलता, ये दर्द दबाया दिल पता है कैसे मिलता है, ये निगाह बचाने से मिलता है, यानी गुनाह से बचने का गम उठाने से मिलता है। कि जब हसीन सामने आएगा तो क्या कहे, जब वो आ गए सामने नादीना बन गए। जब नजर नीची कर ली, हसीन सामने आया उसने नजर नीची कर ली, और जब वो चला गया तो उसने निगाह उठा ली। हसीन ये इस तरह दर्द, ये दिल, ये दर्द भरा दिल इस तरह मिलता है, यानी अपनी ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो उसका खून कर दे, उसको ज़िबह कर दे, तब जो है दर्द भरा दिल मिलता है। तो ऐसे नहीं मिलता कि जिक्र तिलावत तहज्जुद से नहीं मिलता, जो जिक्र तिलावत तहज्जुद रात को जिक्र करता है, तिलावत करता है, तहज्जुद पढ़ता है, सुबह जब सड़कों पर निकलता है माँ बहन औरतों को देखता है तो क्या ये दर्द भरा दिल लगता है, ये शैतान है, ये अपने को भी धोखा दे रहा है, मखलूक को भी धोखा दे रहा है। इस तरह थोड़ी मिलता है, ये दर्द भरा दिल मिलता है कि अल्लाह को क्या एक लम्हा भी नाराज न करे। जो शख्स अल्लाह ताला को हर लम्हा खुश रखता है उसको ये दर्द भरा दिल मिलता है, और जिसके पास ये दर्द ही नहीं है, अरे सोचो उसके पास ये दर्द है कि जो हर औरत को देख रहा है, हर लड़के को देख रहा है, और टीवी भी देख रहा है, और जो है सूद भी खा रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तमाम बदमाशियां कर रहा है, ये दर्द भरा दिल है उसके पास। अरे दर्द भरा दिल तो वो है कि वो है दर्द भरा दिल जिसके दिल में ये आरजू हो कि अल्लाह मैं आपको खुश रखूंगा और एक लम्हा भी आपको नाराज नहीं करूंगा, तो जिसके पास ये कैफियत है वो रखता है दर्द भरा दिल। और जो औरतों को देख रहा है वो थोड़ी दर्द भरा दिल लगता है, वो तो शैतान नंबर वन है। चाहे इतनी बड़ी दाढ़ी हो, चाहे जो तहज्जुद पढ़ता है, चाहे हर साल हज उमरा करता है, चाहे ज़कात देता है, चाहे चिल्ले लगाता है, लेकिन ये शैतान है जो औरतों को देखता है। ठीक है, इबादत तो शैतान ने भी की थी, उसने ऐसी इबादत की थी कि फरिश्ते इस्तेमाल करते थे, तो इबादत करना कमाल नहीं है। अरे कमाल तो यह है कि औरत सामने आ जाए और अपनी निगाह नीचे कर ले। क्यों कहे कि अल्लाह मेरे मौला का हुक्म है, मेरे मौला ने मना किया है कि किसी की माँ बहन बहू बेटी को मत देखो, वो नहीं देखता। दादा फिर उससे दिल से पूछे क्या गुजरती है, देखो बताओ, अच्छा सच से बताओ, नजर बचाने में कितनी तकलीफ होती है ना, कितना मुश्किल काम है ना, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन इसी तकलीफ से तो अल्लाह मिलता है। अगर इस तकलीफ के बदले में अल्लाह मिल जाए तो सौदा सस्ता है या महंगा है, सस्ता है सौदा है। इसलिए बस एक बात का सुनाता हूँ, खत्म करता हूँ। एक मजदूर जा रहे थे अल्लाह की याद में मस्त, अल्लाह के दीवाने, चलते चलते उनसे कैफियत हुई, एक जज्ब की कैफियत, आसमान की तरफ सर उठाया और अल पूछा कि अल्लाह मैं तेरी क्या कीमत अदा करूं कि तू मुझको मिल जाए, मैं तेरी क्या कीमत अदा करूं कि तू मुझको मिल जाए, किस चीज से अल्लाह तू मुझको मिलेगा। आसमान से आवाज आई, दोनों जहान मुझ पर फिदा कर दे, मेरी दुनिया भी दे दे, आखिरत भी मुझको दे दे, यानी मेरी मर्जी मैं तेरे साथ जिताए करूं। उसने कहा, तब मजबूत भी अजीब था, वो कहता है कीमत है खुद हर दो आलम गुफ्तई, ये अल्लाह आपने अपनी कीमत दोनों आलम बताई। कहता है कि निर्ख बालकुन की अरदानी हनूर, कि अल्लाह अपनी कीमत और बढ़ाइए, अभी तो आप सबसे मालूम होते हैं। अरे दोनों जहां देकर अगर हम अल्लाह को हासिल कर लें दोस्तों, क्या ये तो बहुत सस्ता सौदा है। कितने बड़े मालिक जो दोनों जहान का खालिक है, जो दोनों जहान का खालिक है, अगर हम दोनों जहान उस पर फिदा करके अल्लाह को हासिल करें, फिर भी सस्ता सौदा, सस्ता सौदा, क्योंकि अल्लाह इतना कीमती है दोस्तों, इतना कीमती है कि उस अल्लाह ताला की उसके कीमत होने की अलामत सुन लो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया का खून मुबारक बहा अल्लाह के लिए, तो हमारी क्या चीज है? हमारी इबादत, हमारा खून, हमारा जिक्र तिलावत क्या हैसियत रखता है अल्लाह के सामने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक के सामने सहाबा ने, 70 सहाबा ने औहद के दामन में अपना खून शहादत पेश कर दिया और हमसे एक नजर की हिफाजत नहीं की जाती। सहाबा ने तो पेट पर पत्थर बांधे, हमारा पेट पर हलवा बंधा हुआ है लेकिन फिर भी हम नाफरमानी करते हैं। सहाबा ने पेट पर पत्थर बांधे लेकिन अल्लाह को नाराज नहीं किया। हम अपने पेट पर हलवा बांधते हैं और क्या बांधते हैं? कढ़ाई मुर्गी बांधते हैं लेकिन उसके बावजूद गुनाह करते हैं। ये फर्क है। और नाम लेते हैं सहाबा का, अरे सहाबा की कुर्बानी, सहाबा, अरे ये कुर्बानी नहीं है। अब नाम लेने से कुछ नहीं होता, अमल करे तब बात बनती है। वो अमल क्या है कि बाजार में जब निकले तो निगाह नीचे कर ले। औरत अगर ग्राहक आ जाए तो क्या जरूरी है उसके हाथ में आंख डालकर बात करना? किसने कहा लिखा है कि औरत की हाजी आपकी क्या चाहिए? हाँ जी अच्छा कपड़ा, हाँ देखिए देखिए बहुत अच्छा है। अब क्या जरूरी है निगाह नीचे करके बात करे? क्या कोई वो जबरदस्ती करेगी कि तुम हमको देखते क्यों नहीं हो? या किसी कोई मामला पड़ जाए और सामने आ जाए मजबूरन बात करनी पड़े तो क्या जरूरी है उसको देखना? निगाह इसी करके बात करे और सामने आ जाए न मत देखे न लड़के को देखे, कौन पीछे पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बात है, हमको अपना नफ्स अजीज है। अभी नफ्स कहते हैं कि साफ नजर बचाना बहुत मुश्किल है। अरे कौन इतनी मुझा अदा करे, इतना मुश्किल करे? तो दोस्तों अगर नजर बचाना मुश्किल मालूम होता है तो चाहिए कि फिर चिड़िया पहन के बैठ जाए, फिर अल्लाह का नाम न ले, अल्लाह के रास्ते का नाम ना ले कि जी हम तो ये हम तो वो बड़े हम तो ना करें।